تو دنیا کے فائدے عارضی، آخرت کے بہترین، اور جس سے اللہ نے اچھے وعدے بھی کیے ہوں پھر وہ اس سے ملنے والا بھی ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو دنیا کی صرف فائدے ملے لیکن قیامت کے دن وہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس دن وہ پکاریں گے، کہا جائے گا بتاؤ کدھر ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں گمان کرتے تھے، کدھر ہے تمہاری بینک سٹیٹمنٹ، کدھر ہے تمہارے پراپرٹیز کے ڈاکیومنٹس، کہاں ہے تمہاری دولت مال جو تم کہتے تھے یہ ہمارے بڑے کام آئیں گے، بڑی عزت ملے گی، آج کیوں نہیں مل رہی؟ لیکن روز قیامت مشرکین بے بس ہوں گے، تو ان کی بے بسی اور ذلت کی کہانی آیت 63 سے 66 میں ہے، قال الذین حق علیہم القول، اب سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی بات ہم پہ سچ ہو گئی، یعنی جہنم میں ڈال دیا گیا، ربنا ہؤلاء، اس کو بھی ذرا سا درد سے محسوس کیجئے، جہنم میں ایک عذاب جھگڑوں کا ہوگا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا ہوگا، انگلیاں اٹھا کر کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ لوگ، الذین اغوینا، جنہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، یعنی ہدایت سے ہٹا دیا تھا اور ہمیں سیدھے راستے سے کر دیا، اور آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ ہم کبھی ان سے بات نہ کریں، یعنی جہنم کے اندر جھگڑے باتیں کر کرا کے اس دن کی بے بسی کو دکھا رہا ہے۔ آج دنیا میں بھی یاد رکھیے غلط کام پہ ملنے والے اینڈ پہ الگ ہو جاتے ہیں، حق کی ایک ایسی خوبصورت باؤنڈ دولت ہے کہ جس پہ لوگ جڑ جاتے ہیں، تو لہٰذا آگے توبہ کے بعد ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی بات ہے 66 سے 70 میں، کہ جو ہوا سو ہوا، اٹس اوکے۔ اور یہ بھی قرآن کا ایک خوبصورت مزاج ہے، سورتوں کے اینڈ کی طرف جب جاتے ہیں نا تو پائل اپ کیا جاتا ہے، چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، فم من تاب و من عمل صالحا، بس جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، بس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں ہو جائے، اللہ ہمیں اسی میں کر دے، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دے اور ہمیں آگے سے اپنی بہتری کی توفیق دے۔ وربک یخلق ما یشاء، آپ کا رب جو پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے اور چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے خیر میں سے، یعنی ہر بندہ اللہ کا ایک ماسٹر پیس ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا پورا قابو ہے اور اس کی تعریفیں ہیں، وہو اللہ لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الحمد فی الاولا، اس کی پہلے بھی تعریف تھی، والآخر اور بعد میں بھی ہے، ولہ الحکم اور حکم اسی کے ہیں، فیصلے اسی کے ہیں، وإلیہ ترجعون، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لو۔ پھر آیت 71 سے 73 میں سلسلہ روز و شب، اللہ کی عظیم نعمت، آپ دیکھیے کہ آپ کے میرے ارد گرد حیرت ناک حد تک انیوژل چیزیں دن رات ہوتی ہیں، باہر روشنی ہے، اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا جاتا ہے، کبھی سردیوں میں باہر دھوپ کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ کے سامنے سایہ بھی ادھر گیا بھی ادھر گیا، لوگ چار پائیاں ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور سورج ڈوب جاتا ہے، کس نے ہلایا کس نے جلایا؟ وہ اللہ آپ سے مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، کھلا رہی تم، آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھ لیں، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر تم پر تمہارا رب ہمیشہ کی رات کر دے، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بدیان، کہ لے آئے روشنی، افلا تسمعون، پھر تم نہیں سنتے؟ اور پوچھ لو ان سے کہ اگر اللہ کر دے تم پر ہمیشہ کا دن، قیامت تک کے لیے، ہے کوئی الہ جو تم پہ رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون پالو، افلا تبصرون، دیکھیں دن کی بات ہوئی تھی تو تسمعون، اور رات کی بات ہے تو تبصرون، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا، ومن رحمتی ہی، اور اسی کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیا کہ جعل لکم اللیل والنہار، اس نے بنا دی رات اور دن تاکہ تم اس میں سکون بھی پاؤ اور اس کا فضل بھی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ کیا یہ انیوژل چیزیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کے میرے ارد گرد؟ ہم کیسے رات کو ایسے مردوں کی طرح لیٹ جاتے ہیں، بچے بھی تھک ہار کے تنگ کر کر کے سو ہی جاتے ہیں، صبح دن میں ہنگامے تھے، شور تھا، غل غل، پتہ نہیں کیا کچھ، اور رات کو سب سوئے ہوئے محل کی طرح سوئے ہوئے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے، اس لیے پھر مان لو کہ خود ساختہ معبود کام نہیں آئیں گے۔ آیت 74 سے 75 ہے کہ تم جن کو بڑا بناتے ہو وہ بڑے نہیں ہیں، बल्कि वो हस्ती बड़ी है जो कायनात का निज़ाम चला रही है, और बल्कि उस दिन तो एक दूसरे के बारे में सवाल जवाब भी हो रहे होंगे, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। आगे है वो किरदार जिसको कारून कहते हैं, 76 से 77। कारून को अहले खैर की नसीहत। कारून कौन था? इन कारून का न मिन कौमी मूसा, मूसा की कौम में से था। फबगा अलैहिम, फिर उसने बगावत की उन पर, यानी बड़ा बना, सरकशी की, और हमने उसको क्या दिया था? वातैनाहु मिनल कुनूस, कुनूस कंस की जमा, और ख़जाने को कहते हैं, यानी हमने खजानों के ख़जाने उसको दिए थे कि उनकी तो चाबियां भी ऊँटों की एक बहुत बड़ी जमात पे बोझल पड़ती थी। जब उसकी कौम ने उसे कहा कि ला तफरख, डोंट फ्लॉन्ट, तकब्बुर ना करो, फ़र्क का शिकार ना हो, यानी शो ना मारो, बड़े ना बनो, इतना एक्सपोजर ना करो अपनी दौलत का, क्योंकि नल्ला हला जो हिब्बुल फरहीन, अल्लाह को ऐसे शोखियाँ मारने वाले पसंद नहीं है। हाँ, बाकी रह गई दुनिया, ये है पूरा इस्लामिक मनी मैटर्स का खुलासा। आय 77 को लिख के रख लीजिए, आपसे कोई कहीं राह जाते भी पूछ लेना कि इस्लाम माल के बारे में क्या कहता है, सीधा सा जवाब है, वब्तगी फी मा आताकल्लाहुद्दारल आखिरा, बस तलाश कर उसमें से जो अल्लाह ने तुझको दिया है आखिरत का घर, यानी अपने माल के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए, घर के ज़रिए, अल्लाह ने तुम्हें जो सहूलतें दी, स्किल्स दी, अल्लाह की रहमत है, उसको आखिरत के लिए लगाओ। लेकिन वला तनसा नसीबक मिन दुनिया, अपना दुनिया का हिस्सा भी ना भूलो। वाहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और तुम भी वैसे ही भलाई करते जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की। वला तबगिल फसाद फिल अर्दी, पैसे के एक्सपोजर और उससे बहुत चीज़ों को खोल के फैलाकर दुनिया में फसाद ना डालो, क्योंकि अल्लाह को मुफसिद अच्छे नहीं लगते। तो क्या पता चला, अपने माल से अपनी बेसिक ज़रूरियात भी पूरी कीजिए, अपने इर्द गिर्द वालों की भी, और जो एक्स्ट्रा है उसको आखरत के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। ये नहीं कि सारा देकर अब आप खुद मांगने निकल चले। इसके बाद आयत 78, अल्लाह के फजल से मिलता है जो मिलता है। काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कहने लगा देखो ना, मुझे तो अपने इल्म की बुनियाद पर मिला। ये जुमला नहीं बोलना, अपने बच्चों को भी कह, कभी कभी गलती से भी बोलते हैं, जी इतना पढ़ा, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में गए, हमने बच्चों को जी डॉक्टर बनाया, और कुछ नहीं, जी हमने रातों को उठकर पढ़ाया, हाफिज़ बनाया, फजर के बाद पढ़ाया। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से, सारी कोशिश भी आप कर लें, लेकिन मिलता तब है जब अल्लाह आप पर फजल करता है। तो ये किस्म का खुद पसंदी का जुमला है। फिर आगे पता चल रहा है कि अल्लाह का इनाम किसे मिलेगा। 79 से 82 में, फ़खरज अला कौमी ही फी ज़ीना, अब ये ड्रॉप सीन है, जैसे फिरौन पानी में डुबोया गया ना, तो ये कारून क्या हुआ इसके साथ, बड़ा बन ठन के वहाँ से गुजरता है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम तौरात के दर्स दिया करें, या जो भी अल्लाह ने उनको हिकमत की बातें दी थी। अब इसके ठाट बाट को देख कर, क़ाल अल्लज़ीना युरीदूना अल-हयात अद-दुनिया, उन लोगों ने कहा जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते थे, या लैता लना मिस्ला मा उतिया कारून, हाय काश कभी हमें भी तो कारून जैसा मिल जाए, क्योंकि ये तो बड़े ही मुसीबे वाला है। इसके बरक्स वो लोग जिनके पास इल्म था, उन्होंने कहा वैलकुम, ये ना ख्वाहिश करो, क्योंकि सवाबुल्ला की खैर, अल्लाह का सवाब बेहतर भी है उसके लिए जो ईमान ला कर अमल साले करे। लेकिन ये बात बमायुलका इल्ला साबिरून, ये बात नहीं समझ आती, ये इल्का नहीं की जाती मगर सब्र वालों को। यहाँ से आपको दो किरदार दिखे, आपकी दुनिया में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको हो सकता है कारून से भी ज़्यादा मिले, और बल्कि मैं अक्सर पूछती भी हूँ कि कारून ज़्यादा अमीर था या आज आप ज़्यादा अमीर हैं, आप ज़्यादा अमीर हैं। उसकी तो चाबियां बेचारे की इतनी थी कि ऊँटों पे रखें, कैसे ढूंढता होगा, जाकर चीज़ निकालता होगा, फिर खर्च करता होगा, फिर कपड़े निकालता होगा, फिर खाना खरीदता होगा, और आप एक कार्ड स्वाइप करते हैं, आप लाखों के मालिक, एक चेक साइन करिए आप, एक और कुछ नहीं, आपके दुनिया में सिर्फ दो फिगर्स हैं, तीन डाल दीजिए, आपके पैसे मेरे पास, मेरे आपके पास, आगे हमारे पास ज़्यादा सहूलतें। आज उसके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, टच सिस्टम नहीं था, घर बैठकर खाना ऑर्डर नहीं कर लेता था, नेट से शॉपिंग नहीं करता था, तो अल्लाह ने आज कुछ हमें भी कम नहीं दिया। असल बात यह है कि उसके दौर में वो किरदार था, लेकिन उसकी इस नाशुक्री का नुकसान देख लीजिए, फ़खसफ ना भी ही वबीदार ही खिलार, हमने उसको उसके घरों समेत दफन कर दिया, यानी उसका घर भी और वो भी खसफ हो गया, और कोई जमात ऐसी नहीं थी जो उसकी अल्लाह के मुकाबले में मदद करती, और ना वो मदद किया हुआ था। बस हो गए वो लोग जो कल तक उसकी जगह की तमन्ना कर रहे थे, कहेंगे हाय अफसोस, अल्लाह ही है जो रिस्क को बढ़ाता है या कम करता है, और अगर अल्लाह का हम पर एहसान ना होता तो हमें भी आज उसी के साथ धंसा दिया जाता और काफिर फला नहीं पाते। तो लोगों को फिर उसका बुरा अंजाम देखकर समझ आ गई। अब आगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से आखरत का घर किसको मिलेगा? आजजी करने वालों को। तिल का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवम फिल अर्दी वला फसादम वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। ये है आखरत का घर जो हम उन लोगों को देते हैं जो दुनिया में बड़ा नहीं बनते और फसाद भी नहीं मचाते, और आखिरी अंजाम तो मुत्तकीन का है। तो इस आयत में से चंद नुक्ते नोट कीजिएगा। आखरत का घर, यहाँ इसकी बात है किनको मिलेगा? जो दूसरों पर बड़े नहीं बनते, बालादस्ती नहीं करते, हमें बड़ा बनाओ, हमें लीडर बनाओ, हमें चुनो, हमें ये करो वो करो, नहीं। दूसरी बात है जो दूसरों को जुल्म से जेर नहीं करते, इसको आप और मैं कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ये नहीं कहते कि हम जो चाहें लोगों से हथियार लें, और जो दूसरों पर बर्तरी के लिए ज्यादती नहीं करते। तो क्या पता चला कि आजजी, जो जितना झुकेगा, जो जितना अल्लाह के लिए अपने आप को कमज़ोर करेगा, अल्लाह उसको उतना ऊपर करेगा। अल्लाह के नबी के एक हदीस में तीन चीज़ों पे कसम खाई गई है, उसमें एक ये भी है कि मन तवादा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसको इज़्ज़त देगा। आज भी देखिए दौलत के साथ ये मसाइल शुरू हो जाते हैं, दिखावा, फिर घर, शादियाँ, थीम मैरिज, बड़े इवन लोग खाते पीते कपड़े तक पहनते हैं तो दूसरों को जलाने के लिए, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। बाकी अल्लाह ने आपको जो दिया है आप उसको अल्लाह के साथ अच्छे ताल्लुक़ और शुक्राने के साथ खाइए पिए, फ़ायदा उठाइए। उसके बाद अब नेकी और बदी के नतीजे का फ़र्क बताया जा रहा है आयत 84 में। मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिन्हा, जो एक हसना एक नेकी लेकर आएगा उसको उससे ज़्यादा मिलेगी, और जो एक बुराई लाएगा उसको बस उतना ही बदला मिलेगा जो उसने किया और जो वो करते थे। अब मुझे बताइए कि आमतौर पे क्या होना चाहिए? आपकी हर नेकी 1:10 है और हर गुना 1:1 है, तो हमारी नेकियां ज़्यादा होनी चाहिए ना। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसकी इकाइयाँ उसकी धाइयों पर गालिब आ गईं वो तबाह हो गया। यानी एक एक करके बंदा 10 से ज़्यादा गुना कर लेता है और एक नेकी भी नहीं कर पा रहा होता। तो अल्लाह ने तो बड़ी रहमत की है, अब इसका बाद हम लोग कितना अपने ऊपर रहम करें इसको देखना है। और फिर उसके बाद खिदमत कुरान का आला सिला। अक्सर दुनिया में कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को वो नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं, उनसे मिल जाता है जो उनसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आमत उन नास उनकी कदर नहीं करती, घर वाले नहीं करते, दोस्त और साथी उस बंदे को हल्का और हकीर जानने लगते हैं। अल्लाह ताला बता रहा है कि नबी आप बेफिक्र हो जाएं, ये मक्का वाले आज आपकी नाकदरी कर रहे हैं, लेकिन इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरान लरादुक इला माहत, आपका रब आपको वापस लेकर आएगा आपके पलटने की जगह। क्या पता चला, बाज़ दफ़ा तो इशारा है कि मक्का में वापस लाएगा मदीना से जब आप आएंगे, या आपको मदीना, और दूसरी बात यह है कि अल्लाह नोस्ती बस, असल बात आपके मेरे लिए जो इसमें वो क्या है, मन जा बिल खुदा व मन हुआ फी दलाले मुबीन, इन दोनों को अल्लाह जानता है। आप अच्छे काम कीजिए, बुरे से रुक जाइए, और नतायज अल्लाह पर डाल दें। आयत 86-88 में बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता, जिसको वो कह सकते हैं ना नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ असल में नबी सल्लम को इस बात की तसल्ली दी गई है कि ये अगर आपकी मुखालफत भी कर रहे हैं, आपको मुख्तलिफ तरह से तकलीफ़ों में डाल रहे हैं, तो लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना और आप हक़ पे हैं और आपका रब आपका साथ देगा। तो बड़े ही खूबसूरत पैगाम पे सूरत कसस पूरी होती है कि कैसे लोग अल्लाह के नबी सल्लम को सताते रहे, तकलीफ़ें देते रहे, लेकिन अल्लाह ताला उनको तसल्ली देता रहा और अल्लाह के रास्ते में वो बुलाते ही रहे।